ज़ोया के मन में कई सवाल थे, पर जवाब दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। नर्स उसे आराम करने को कहकर अपने कमरे चली गई। उसे ज़ोया के कमरे के बगल वाला कमरा दिया गया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तुरंत ज़ोया का इलाज कर सके। ज़ोया को बहुत कमज़ोरी आ गई थी। वो आँखें बंद करके लेट गई, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी। सुबह से कुछ नहीं खाने के कारण कमज़ोरी और बढ़ रही थी। उसे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे उसकी थोड़ी सी बीमारी पर भी अम्मी उसका पूरा ध्यान रखती थीं। पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थीं, तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती थीं। लेकिन आज मौत के मुंह से बचकर भी उसे खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। ये सोचकर ज़ोया की आंखें फिर भर आईं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अरहन एक बड़ी फूड ट्रॉली लेकर अंदर आया। ज़ोया उसे देखकर उठकर बैठ गई और अपना दुपट्टा संभालने लगी। अरहम ने उसे एक पल देखा और मुस्कुरा दिया। अगर सजना संवरना हो गया हो तो कुछ खा लिया जाए, अरहम ने कहा। ज़ोया ने उसे घूर कर देखा पर कुछ नहीं कहा। अरहम ज़ोया के लिए खाने की प्लेट लगाने लगा और बोला, माफी चाहूंगा, तुम्हारी पसंद का खाना मैं नहीं ला सका क्योंकि वो तुम झेल नहीं पाओगी। अभी तुम काफी कमजोर हो, इसलिए जो तुम्हारी नर्स ने बताया है वही लाया हूं। ज़ोया ने एक नज़र खाने को देखा। उसमें अनार का जूस, बीमारों वाली खिचड़ी और कुछ कटे हुए फल सलीके से रखे थे। मुझे नहीं खाना है, ज़ोया ने कहा। ज़ोया बेबी, ये तुम्हारे नखरे दिखाने का समय नहीं है, और बेबी तुम्हें लगता है तुम इस हालत में हो कि हमारे सामने ना कहने की हिम्मत कर सको, अरहम ने कहा। मुझे नहीं खाना है, जाओ यहाँ से, और तुम तो मुझे अपनी शक्ल ही मत दिखाना, ज़ोया ने फिर कहा। ओहो, ज़ोया की बात सुनकर अरहम जोर जोर से हंसने लगा। तभी गेट पर हंसी की आवाज आई। अरमान गेट पर खड़ा था और वो अरहम और ज़ोया की बातें कुछ देर से सुन रहा था। अरमान अंदर आ गया और बोला, ओ स्वीटी, तुमने खाना नहीं खा रहा अभी तक। ओ माय बेबी, ऐसे तो तुम और कमजोर हो जाओगे। चलो बेबी, कम ऑन, खाना खाओ। अरहम, आओ जल्दी, बेबी के मुंह में खाना डालो, मैं मुंह खोलता हूँ। ऐसा कहकर अरमान ने ज़ोया के जबड़ों को अपनी मुट्ठी से पकड़ लिया। मुंह खुलते ही अरहम उसे खाना खिलाने लगा। अरहम ने एक साथ 4-5 चम्मच खिचड़ी ज़ोया के मुंह में डाल दी। खिचड़ी उसके गले में फंस गई और ज़ोया ने सारा खाना अरमान के हाथों में ही उल्टी कर दिया। ज़ोया को जोर जोर से खांसी आ रही थी। अरहम ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और उसकी कमर सहलाने लगा। अरमान के कपड़े और हाथ उल्टी से खराब हो गए थे। ज़ोया डर के मारे कांप उठी कि ये साइको क्या करेगा, पर अरमान ने कुछ नहीं कहा और वो ज़ोया के कमरे में बने वॉशरूम में चला गया। ज़ोया को खांसी से कुछ आराम मिल गया था। वो अरहम को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या मैं कोई जानवर हूं जो तुम दोनों भाई इस तरह का बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ? इतने में अरमान आ गया। उसने ज़ोया की बात सुन ली थी। अरमान ने अरहम से कहा, ब्रो, तुम्हें क्या खाना खिलाना नहीं आता? एक साथ 4-5 चम्मच भरकर कौन खिलाता है? अरमान ने मजाकिया लहजे में कहा था। सॉरी ब्रो, वो मैंने कभी किसी को खिलाया नहीं है ना, इसलिए। बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही सीख लूंगा, अरहम ने कहा। ज़ोया को साफ समझ आ रहा था कि ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतने में, इससे पहले कि वो कुछ कहती, अरमान अरहम से बोला, ब्रो, मैं फिर से स्वीटी का मुंह खोलता हूँ, तुम इस बार थोड़ा थोड़ा खाना डालना। इतने में ज़ोया चिल्ला उठी, नहीं, तुम दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है, मैं खुद खा लूंगी खाना, तुम दोनों जाओ यहाँ से। ओ जान, मैंने तो तुम्हें शुरू में ही खाना खाने को कहा था, पर तुम्ही ने मना कर दिया था, सो मैं क्या करूं इसमें, इसीलिए हमने तुम्हें अपने हाथों से खिला दिया, अरमान ने कहा और अरहम उसका मजाक उड़ाते हुए हंसा। दोनों भाई एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। ज़ोया का गुस्से से बुरा हाल था। उसने बेबसी से कहा, आखिर तुम दोनों चाहते क्या हो मुझसे, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इस पर अरमान बोला, ओ स्वीटी, क्यों परेशान हो रही हो, पूरी जिंदगी तुम्हें यहीं रहना है, आराम से जान लेना, ओके? पूरी जिंदगी? ज़ोया ने ये बात दोहराई। इससे पहले कोई और कुछ कहता, एक बार फिर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई और ज़ोया ने देखा दोनों भाइयों के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं। तभी अरमान ज़ोया से बोला, खाना खाओ चुपचाप, वरना हमें जबरदस्ती करना भी आता है। ये कहता हुआ वो कमरे से निकल गया और साथ ही अरहम भी निकल गया। ज़ोया हैरानी से दोनों को देखती रही। वो फिर सोचने लगी कि आखिर कौन है वो लड़की और क्यों चिल्ला रही है। कहीं मेरी तरह इसे भी तो इन दोनों ने किडनैप करके तो नहीं रखा। मुझे लगता है इन दोनों भाइयों के दिमाग में कुछ कमी है, पक्का इन्हें किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है, दोनों के दोनों एकदम पागल हैं पागल, ज़ोया मन ही मन सोचती रही। उसने सोचा, मुझे जल्दी से ठीक होना होगा ताकि उस लड़की और मेरे साथ इनकी क्या दुश्मनी है उसका पता लगा पाऊं। ये तो साफ था, ये दोनों गांव से ही जानते हैं मुझे, वरना उन्हें कैसे पता मैं यहाँ छोटी मालकिन कहकर बुलाई जाती हूँ। मैं इन सब बातों का पता लगा कर रहूंगी। जोया ने थोड़ी देर सोचा और दूसरे प्लेट में निकालकर खाना खाने लगी। खाना खाकर उसने अपनी दवा खाई और गहरी नींद में सो गई।